पे कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा मंसूबा बनता है जिससे जो ग्राउंड सिचुएशन है या जो ग्राउंड रियलिटी है इस सारे इशू की, उसको एक लिहाज से तब्दील करने की बात हो, तो फिर उसमें लाजमी है कि भारत उसमें अपना रद्द अमल दिखाएगा।
ओके, लेकिन आज हमने देखा कि वहाँ इलेक्शन हो गए, लोगों ने वोट भी डाला है, उसके नतीजे भी अब आना शुरू हो गए हैं, तो भारत का तो ये कहना था कि इलेक्शन यहाँ पे नहीं होने चाहिए, अब जबकि ये इलेक्शन हो चुके, तो नेक्स्ट स्टेप भारत का क्या हो सकता है?
नहीं, मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपसे एक अर्ज किया था कि ये एक लिहाज से तो रस्मी बात रहेगी कि आप एक फॉर्मली उस चीज को फ्लैग करते हैं, उससे प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं, और जो एक बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान की ये जो अजम्पशन थी कि इस एरिया के ऊपर कोई ज्यादा इशू नहीं है भारत को, इसको आपने रजिस्टर करवा दिया। अब अगर इलेक्शन उन्होंने करवाए हैं, वो जैसे भी इलेक्शन है, वो हमको भी पता है किस तरह के इलेक्शन होते हैं उस एरिया में और कितनी पावर्स हैं, वो म्यूनिसिपैलिटी की भी पावर्स नहीं होती उस सो कॉल्ड असेंबली को, वो एक दूसरा मुद्दा हो जाता है। लेकिन ये भारत के लिए एक अपना सोवरेन राइट एक्सरसाइज करना मेरे ख्याल लाजमी था, जो किया गया।
ठीक, ओके, बताया जा रहा है ब्रिगेडियर महमूद शाह ने भी पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
जी, बताया जा रहा है स्काइप के ज़रिए आप हमारे साथ हैं इस वक्त। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि ये जो इलाका है गिलगित बल्तिस्तान जहां आज इलेक्शन हुए हैं, ये इसकी स्ट्रेटिजिकली ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए?
दरअसल ये जो पुराना स्टेट ऑफ कश्मीर था, इन मैनर उसका हिस्सा भी समझा जाता है और इसका हिस्सा नहीं भी है। तारीखी तौर पे इस तरीके से है कि शायद उस वक़्त जब नक्शे वगैरह शायद इतने सीधे नहीं थे, तो इसको दरियाए सिंध के शुमाल में जो इलाके हैं, यानी ये जो इलाका जब राजा हरि सिंह को फरोख्त किया गया, उसके मुताबिक दरियाए सिंध का जो मशरकी हिस्सा है, तो आप देखते हैं कि उस वक्त शायद ये समझ रहे थे कि गिलगित रिवर को जो ऊपर जाता है उसको दरियाए सिंध समझ रहे थे, और अभी पता है कि दरियाए सिंध का जो माखज है जहाँ से ये निकलता है, वो तो कहीं इधर स्कर्दू से भी नीचे है, हिमालय के थोड़ा से ऊपर है। तो इस तरीके से एक ये हिस्सा नहीं भी है, इसलिए कुछ लोग गिलगित बल्तिस्तान के कहते हैं कि हम कश्मीर का हिस्सा नहीं है। बहर सूरत ये इसकी वो है और इसके अपने रूलर रहे हैं। कभी कभी जो है जो इंडिया में वो तहसीलदार होते थे, वो यहाँ से कुछ ना कुछ वो कलेक्ट करके ले जाते थे, और वो भी जो दरियाए सिंध का माखज है जो कि एक जगह है गुलतरी, वहाँ के करीब से ये निकलता है दरियाए सिंध, और बाकी जो गिलगित है और ये स्कर्दू है ये इलाका इससे ऊपर है, और ये उसी तरीके से अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसका हिस्सा नहीं है कश्मीर का। बहर सूरत ये एक मुतनाज़ा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरे कश्मीर के ऊपर जो है वो समझते हैं कि हमारे पार्टीशन प्लान का ये हिस्सा है, और इसमें कहा गया था कि जो जहाँ की आबादी ज़्यादा हो, यानी मुसलमान ज़्यादा हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, और यहाँ के लोगों के साथ जो है धोखा किया गया, और यहाँ के जो उस वक़्त हरि सिंह राजा थे वो है इंडिया ने किसी तरीके से वहाँ फौजें उतार कर और उस पर कब्ज़ा किया। तो ये एक मसला है जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक भी वो है किसके ऊपर फैसला होना है, और वो ये है कि इसके ऊपर बेसिकली पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर है उसके ऊपर पाकिस्तान का यानी एक मुतालबा है और पाकिस्तान का उसके ऊपर दावा है। इंडिया का दावा तो हम मानते ही नहीं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्लेबिसाइट हो, लोगों की राय मालूम की जाए, और आई एम श्योर कि वो पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए अपना राय देंगे।
जी, सुशांत सरीन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रिगेडियर साहब को आपने सुना है, उनका ये कहना है कि ये फैसला करने के लिए कि मकबूजा कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान जो हैं, ये इलाके किसके हैं, किस मुल्क का ये हिस्सा है, वहाँ के जो अवाम हैं वहाँ पे रेफरेंडम होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, जिस तरह के रेफरेंडम ब्रिगेडियर साहब और इनके कुलीग्स ने करवाए हैं पाकिस्तान में, वो भी हम देख चुके हैं। ये मुशर्रफ साहब के बड़े क्लोज कुलीग थे, 97 या 98% वोट निकालवाए थे इन्होंने मुशर्रफ के लिए जब उन्होंने रेफरेंडम करवाया था। तो उस तरह के रेफरेंडम तो अफ्रीका वगैरह में भी होते हैं, तो वैसा करवाना चाहते हैं तो एक अलग बात है। दूसरी चीज ये है कि शायद ब्रिगेडियर साहब ने जो तारीख है उसका मुतालिया ठीक तरह से नहीं किया। अब अगर तो ये सिर्फ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसका किस तरीके से लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के बाद किस तरीके से उनका डिसाइड किया जाएगा, ये एक डिफरेंट इशू था बनस्बत उसके जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। और उसमें ये हुआ था कि भारत ने और पाकिस्तान ने, दोनों ने, भारत ने नहीं किया था एक्चुअली, पाकिस्तान ने महाराजा कश्मीर के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था। अब ब्रिगेडियर साहब का ये कहना कि पता नहीं ये कश्मीर का पार्ट था या नहीं था, इस पे एक सवालिया निशान है, तो वो कश्मीर की जो एक टुकड़ी थी, सैनिक टुकड़ी, वो तो वहां पर उनका गवर्नर होता था घनसारा सिंह। तो अब शायद ब्रिगेडियर साहब को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन घनसारा सिंह वहां पर था और वो ब्रिटिश भी उसको मानते थे। ये दूसरी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए अंग्रेजों ने जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया था उसको एक लिहाज से अपने प्रोटेक्टोरेट में लिया हुआ था, लेकिन वो टेक्निकली और लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू और कश्मीर का ही पार्ट होता था, नंबर वन। नंबर दो, ये जो सारी की सारी बात है कि इन्होंने वहां पर जो 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 पाकिस्तान की हुकूमत है उसका वहां पर किस तरीके से क्लेम बनता है या नहीं बनता, बिल्कुल, ये तो जिस तरह से पाकिस्तान उसको सारा के सारे को अपना पार्ट मानता है, वैसे भारत भी मानता है। तो ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुई ब्रिगेडियर साहब की, लेकिन कोई और अगर आर्ग्यूमेंट या मार्शल करें तो बेहतर रहेगा।
अब मेरे ख्याल में प्रोग्राम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि पीएमएल नून के सीनियर रहनुमा जो हैं वो हमें ज्वाइन करें और उनसे भी हम इस मौजू पे बात कर सकें। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप बताइएगा, क्योंकि इस वक्त जिन बंदे को हमने लाइनअप किया था गिलगित बल्तिस्तान से, प्रॉबली इस वक्त वो बिजी हैं, हमें ज्वाइन नहीं कर सकते। हमारे प्रोड्यूसर इस वक्त भी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा साथ दें, लेकिन आप ये बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस इलेक्शन में जो पाकिस्तान की तकरीबन जितनी भी सियासी जमातें हैं सब ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस वक्त सरकारी नतीजे अभी तक उसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन क्या ट्रेंड नजर आ रहा है, कौन आगे हैं वहां पे?
में इस सवाल से पहले जो हजरत है इनके, मैं जो
सुशांत
बात कर
सरीन
जी
जी
उनको करेक्शन करूं कि
जी
नंबर वन, मैं क्लियरली कह रहा हूं कि जो पेपर है जिसमें कश्मीर को डिफाइन किया गया है, जब ये सिख महाराजा ने बेचा इसको डोगरा महाराजा को, उसमें कश्मीर की डेफिनेशन दी गई है कि दरियाए सिंध के मशरकी हिस्से में। और अगर इसने दरियाए सिंध का नहीं देखा है कि कहाँ से वो निकलता है, मैंने जगह का नाम बताया गुलतरी, वहाँ से ये निकलता है। इसका मतलब है कि स्कर्दू और उससे साथ मुल्हिका जो भी इलाके हैं और ऊपर जो गिलगित है, और ये तमाम इलाका जो है कश्मीर का हिस्सा नहीं है उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक,
ठीक
और यही गिलगित बल्तिस्तान के लोग कहते हैं। लेकिन तारीख, मैं इनके साथ करता हूँ, एग्री करता हूँ कि कश्मीर का महाराजा कभी कभी यहाँ से टैक्स वसूल किया करता था अपने तहसीलदार के थ्रू।
ठीक
दूसरी बात यह है कि इन्होंने रेफरेंडम की बात की है, रेफरेंडम जो है वो यूएन के अंडर होना है, परवेज मुशर्रफ के अंडर नहीं होना। और अगर ये यूएन को भी नहीं मानते तो
जी,
फिर ये आप खुद ही कहीं ढूंढ
अगर
लें।
यूएन रेफरेंडम कराता है तो ब्रिगेडियर साहब उसके मुताबिक तो पाकिस्तान और जो भारत है दोनों को अपनी फौजें भी निकालनी होगी दोनों जानिब कश्मीर से, तो उसके लिए पाकिस्तान फिर तैयार होगा?
भारत को नहीं निकालनी होगी, बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान को नहीं निकाली, लेकिन पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान को कोई फिक्र नहीं है कि ऐसा कोई होगा। कश्मीर का जो है वो 63% लोग जो हैं मकबूजा कश्मीर की मैं बात करूँ, यहाँ पर तो शायद 90% लोग जो है वो मुसलमान हैं, वहाँ पर जो है 63% जम्मू को मिलाकर मुसलमान हैं, और वो जो है, और इसी तरीके से हैदराबाद का जो निज़ाम था जिसको हेड ऑफ स्टेट कहते हैं उस वक्त, और उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था,
ठीक
और वहाँ हैदराबाद में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी, और इंडिया ने वहाँ पर फौज उतार के वो ज़ोर से वहाँ पर कब्ज़ा किया। तो यही उसूल अगर ये कश्मीर के ऊपर भी अप्लाई करें कि देखो ज़ोर से नहीं होता, वहाँ पर क्योंकि हिंदू ज़्यादा थे तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी उसूल के तहत ये जो जगह है कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का इसके ऊपर जो है इंडिया के दरख्वास्त के ऊपर सीज फायर की गई थी, और उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो करारदाद मौजूद है, और फिर उसके बाद इनके जो हुक्मरान थे उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जो अभी फौत हो चुके हैं,
जी
उन्होंने कहा था वी डोंट बिलीव इन फोर्स्ड मैरिजेस,
ठीक
हम कश्मीर को आज़ादी देंगे। ये तमाम तारीखी हकाइक हैं। अभी आपके बात पे आ जाते हैं कि जो इलेक्शन हो रहा है उसमें क्या रिजल्ट होगा,
राइट
अभी तक नज़र आ रहा है मेरे ख्याल में मिक्स रिजल्ट होगा, और उसमें यह है कि थोड़ा सा सेक्टेरियन अंसर इसमें होगा, इसमें से ज़्यादातर लोग जो है वो आगा खान के जो फिरका है इस्माइलीज,
जी
उसी का इस्माइलीज का जो है एक गढ़ है, तो कुछ वहाँ के इस तरह के लोग मुंतखब हो गए, बाकी जितनी पार्टियाँ हैं पीपल पार्टी की भी लगता है कि कुछ लोग इसमें मुंतखब होंगे, मुस्लिम लीग उनके भी होंगे, और यहाँ पर जो है पीटीआई का भी शायद
ओके
इतना ज्यादा ना हो जितना बाकी मुल्क में है,
जी
लेकिन होंगे 1-2-3 जो है
ओके okay. मेरे ख्याल में ये कश्मीर का जो मसला है, जहाँ तक तो इस पे हमारे सामीन को भी ये पता है कि काफ़ी अशरों से ये एक मसला रहा है दोनों कंट्रीज़ के माबेन, और जब हम इस मसले की हल की बात करते हैं तो दोनों कंट्रीज़ का जो मौक़िफ़ है, उनके जो व्यूज़ हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में इस टॉपिक को हम रोकते हैं, थोड़ा सा आगे जाना चाहेंगे। मेरे ख्याल में शम्स मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है गिलगित बल्तिस्तान से, उनकी लाइन बार बार ड्रॉप हो रही हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और सुशांत सरीन जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पर है बांग्लादेश के, ये दौरा कितना अहम है दोनों कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि हमें मालूम है काफ़ी अहम माहिदों पर इस दौरे के दौरान दस्तखत भी हुए हैं, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं इस वक्त हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके हम इस मौजू पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।
सामिन, वेलकम बैक प्रोग्राम जहां रंग में। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस। इस वक्त भारत से हमारे साथ हैं डिफेंस एनालिस्ट सुशांत सरीन जी, और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब। एक दफ़ा फिर हमें कहा जा रहा है शम्सबीर साहब ने शायद हमें ज्वाइन किया है, ओके दोबारा उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सुशांत सरीन जी, इस वक्त भारत के जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर हैं बांग्लादेश के, ये बताइएगा इस दौरे से भारत और बांग्लादेश दोनों ने क्या हासिल किया है, कितना अहम रहा दोनों कंट्रीज़ के लिए ये दौरा?
देखिए, बहुत पॉलिटिकली भी बहुत अहम रहा और एक लिहाज से स्ट्रैटेजिकली भी बहुत अहम रहा, क्योंकि एक जो मुद्दा था जो बहुत अरसे से, जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तब से वो मुद्दा लटका हुआ था, 1972-73 से एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट हुए थे लेकिन वो डिलीवर नहीं हो रहा था, अंडरस्टैंडिंग होती थी, वो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट का था, उसमें पेचीदगियाँ थी जो बॉर्डर्स थे भारत और बांग्लादेश के, उसको फाइनली सेटल कर दिया गया है और वो एक क्लैरिटी आ गई है, उसमें स्टेटलेस सिटीजन की भी इश्यूज थे, बहुत सारे और मुद्दे थे उसमें, वो एक तो सेटल हुआ और ये बहुत एक लिहाज से हिस्टोरिक अचीवमेंट माना जाना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ मोदी जी का नहीं है, उसमें कांग्रेस ने भी अपनी बड़ी अहम भूमिका अदा की, तो ये एक बहुत बड़ी टेक अवे था। दूसरा, ट्रेड और ट्रांजिट के एग्रीमेंट्स जो हुए हैं वो भी मेरे ख्याल बहुत अहम है। $2 बिलियन की एक क्रेडिट लाइन दी गई है। 2011 में जब मनमोहन सिंह जी गए थे तो उस समय $1 बिलियन दिया गया था क्रेडिट लाइन, अब इस बार उसको बढ़ा करके डबल कर दिया गया है, $2 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है बांग्लादेश को। साथ ही साथ ट्रेड और ट्रांजिट के मुआहदे हुए हैं और जो एक स्ट्रैटेजिक एक तरीके से प्लान है वो ये है कि जो एक सब रीजनल कॉन्टेक्स्ट की बात की थी जहां पर एनर्जी ट्रेड और ट्रांजिट एग्रीमेंट्स और ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट्स नेपाल भूटान बांग्लादेश और भारत के बीच में, मेरे ख्याल उसको अब एक लिहाज से इंप्लीमेंट करने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं और ये एक लिहाज से एक कॉमन मार्केट की तरह बन जाएगा। यही चीज मोदी जी ने जब काठमांडू में सार्क समिट हुआ था वहां पर भी रखी थी और एक लिहाज से पाकिस्तान क्योंकि उसमें अड़ंगा लगा रहा था तो उन्होंने ये कह दिया था कि भाई अगर पाकिस्तान इसमें हिस्सा नहीं डालता तो फिर हम बिना पाकिस्तान के ये मामला करेंगे और अगर वो इसमें हिस्सा डालता है तो फिर सारा सार्क रीजन इसमें करेगा। अहम चीज ये है कि भारत में पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो तो बहुत दी जाती है लेकिन एक लिहाज से ट्रेड और कॉमर्स के हिसाब से पाकिस्तान ब्रिंग्स वेरी लिटिल टू द टेबल। हमारा $2.5 बिलियन का ट्रेड है पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ हमारा डबल ट्रेड है इससे, और अगर उसमें इनफॉर्मल ट्रेड मिला दिया जाए तो बांग्लादेश के साथ भारत का लगभग $10 से $15 बिलियन का ट्रेड ऑलरेडी हो रहा है, श्रीलंका के साथ भी $7-8 बिलियन का हो रहा है। तो मेरे ख्याल ये जो एक अहमियत थी इन दोनों मुल्कों की या इन जो छोटे मुल्क जो तसव्वुर किए जाते हैं इनकी जो अहमियत थी शायद उसको अब पहचाना जा रहा है और उसको एक एक तरीके के एक स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट में उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है।
ओके, सुशांत जी, एक तासुर ये भी पाया जाता है कि ये जो मोदी साहब का दौरा है बांग्लादेश का, ये खिते में भारत का जो असर रसूख है उसको बढ़ाने के लिए और चीन को काउंटर करने की वज़ीर आज़म मोदी जो है उनकी पॉलिसी का हिस्सा है, तो इस तासुर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
तो इसमें कुछ सदाकत जरूर है इस तासुर में, क्योंकि अगर भारत जैसे चाइना कई बार स्पूक होता है कि अमेरिका उन एरियाज में अगर आ रहा है जहां पर चीन अपना बैकयार्ड समझता है या जहां पर अपना इन्फ्लुएंस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है, तो ऑब्वियसली ये एक एक तरीके की कॉम्पिटिटिव एक इन्वायरमेंट जरूर रहेगा चीन के साथ, जो एक लिहाज से इन छोटे देशों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये अब दोनों के बीच में जब चीन और भारत के बीच में अगर कंपटीशन होता है तो उसमें फायदा तो इन छोटे देशों का है कि दोनों इनको वू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बेटर तरीका एक देश को अपने साथ जोड़ने का एक कॉन्टेक्स्ट स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि वो एक कोऑपरेटिव अगर तरीके से हो तो वो ज्यादा पायदार भी होता है और ठोस भी होता है।
जी, एक नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक स्टेटमेंट भी दिया है कि बल्कि उन्होंने जो टेररिज्म हो रही है खिते में उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया है, तो एक दफा फिर जबकि दौरा बांग्लादेश का हो रहा है पाकिस्तान के बारे में ये बयान देना, इसकी क्या जरूरत क्यों जरूरत पेश आई?
नहीं, मेरे ख्याल वो एक एक, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर टेररिज्म की बात करें तो भारत की अक्सर बांग्लादेश के साथ ये कंप्लेंट रहती थी कि वहां पर बहुत सारे जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं बांग्लादेश की जमीन से भारत के खिलाफ ऑपरेट करते थे और जब से शेख हसीना वाजिद की सरकार आई है उन्होंने बड़े कड़े कदम उठाए हैं और उन नेटवर्क्स को काफी हद तक ध्वस्त किया है, तोड़ा है। तो मेरे ख्याल ये उस कॉन्टेक्स्ट को भी आप नजरअंदाज ना करें और ये एक लिहाज से स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट भी है कि अगर इस खित्ते में अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश और भारत में लेके अगर कहीं से आतंकवाद का कोई एपिसेंटर पाया जाता है तो वो सारे के सारे जो ट्रेसेस हैं वो पाकिस्तान और की तरफ ही लीड करती हैं, तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, इसको झुटलाया भी नहीं जा सकता।
ठीक ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब मैं आना चाहूँगी, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बज़ाहिर जो इकदामात उठा रहा है उससे ना भारत मुतमईन नज़र आता है, और बज़ाहिर जब से गनी साहब की हुकूमत आई है अफगानिस्तान में तो किसी हद तक वो एक ब्लेम गेम जो हमें नज़र आती थी, अल्फाज की जो जंग हमें नज़र आती थी दोनों कंट्रीज़ के माबेन, उसमें किसी हद तक कमी आई है, लेकिन वो सदर गनी भी इतने सेटिस्फाइड नजर नहीं आते, वजह इसकी क्या है?
दरअसल अफगानिस्तान में बहुत सी कुव्वतें जो है वो कारफरमा हैं, और वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा किया जाता है, और वो इंतहाई दबाव में हैं कि उन्होंने क्यों पाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर किए हैं। मगर मैं समझता हूँ कि वो अपनी जगह पे मजबूत रहेंगे, और ये कुव्वतें जो हैं ये शायद अपने इन इरादों में कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को बहुत हद तक उसने चेकआउट किया हुआ है, बॉर्डर तक जो है इलाका साफ कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान में जो कहा जाता था कि वहाँ पर टेररिस्ट के डेंस हैं, चाहे बैनुल-अक़वामी तौर पे या मुल्की सतह के ऊपर, उस तमाम को साफ कर दिया है, और वो तमाम लोग बाकी अफगानिस्तान में उन्होंने पनाह ली हुई है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की जो है मजबूरी ये है कि उनके सिक्योरिटी फोर्सेस शायद इतने मजबूत नहीं हैं कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले सके, तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसके ऊपर अफगानिस्तान की हुकूमत से कोई शिकायत नहीं कर रहा है। लेकिन उस दौरान काफ़ी पेशकदमी हुए दोनों के ताल्लुकात में। आपको मालूम है कि आर्मी टू आर्मी और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और इस तरीके से दोनों के इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है
काफ़ी उनमें अहम मुआहदे हुए हैं गुज़श्ता दिनों, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद सदर गनी जो है उनका एक बयान, बल्कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से वो बात कर रहे थे कतर में, अमरीकी रहनुमा भी उसमें शरीक थे, मशरक़ वस्ता के लोग भी उसमें थे, पाकिस्तानी कुछ लोग भी बताया जा रहा था उसमें थे, लेकिन बज़ाहिर उन्होंने जो बयान दिया है सदर गनी ने पाकिस्तान के हवाले से, तो वो कुछ ज़्यादा मुतमइन नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो तावुन कर रहा है अफगानिस्तान के साथ उसमें मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सुशांत जी, यहाँ पे हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, आइंदा भी आपसे बात होगी। और ब्रिगेडियर साहब, एक और ख़बर पाकिस्तान के हवाले से ये आई है कि पाक अफगान बॉर्डर जो है वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी फ़ौज और दहशतगर्दों के माबेन झड़पें हुई हैं, जिसमें 7 पाकिस्तानी अहलकार जो हैं वो हलाक हुए हैं और दहशतगर्द भी 17 मारे गए हैं। इस बारे में हमें बताइएगा ये वाकया किस तरह पेश आया।
दरअसल ये जो ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब है ये चल रहा है, और ये नॉर्थ वजीरिस्तान के बॉर्डर में जितना भी बॉर्डर है राइट साइड के ऊपर, यानी आप अफगानिस्तान को देखते हुए, तो वो बॉर्डर तक ये पहुंच गए हैं। ये जो गुलाम खान से दाएं तरफ यानी मशरक की तरफ जगह है, वहाँ पर बांगी दरा एरिया उसको कहते हैं, वो हो चुका है हमारे कब्जे में। इसी तरह जो इसके लेफ्ट साइड पे है गुलाम खान का जो चेक पोस्ट है जिसको सैद गई कहते हैं, ये तमाम इलाका जीरो लाइन तक पाकिस्तान पहुंच चुका है। लेफ्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो शुमाली और जुनूबी बलूचिस्तान के बिल्कुल बीच में है, और उनकी बॉर्डर उसके ऊपर गुजरता है, कहते हैं पीर गल, और ये जो शवाल में उसी कोने में यानी दत्तखेल से भी काफी आगे अभी उस जगह लड़ाई हो रही है जहाँ पर अफगान सरहद है, और उसके वहाँ पर काफी पहाड़ी इलाका भी है, तो वहाँ पर जो तकरीबन हैंड टू हैंड फाइट हो रही है। निकल आते हैं और ये कभी उस तरफ चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, तो कल का जो वाकया है उसी ऑपरेशन का हिस्सा है। उसी इलाके में हमारे इंजीनियर जो है वो उनके जो मुख्तलिफ माइंस या IEDs इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाई हुई है उसको भी क्लियर कर रहे हैं, और ऑन फुट जो है वो लड़ाई हो रही है। जो कल का जो वाक्य है आप बता रहे हैं, इसी तरह उनके साथ मुठभेड़ हुई और उसमें एक सुसाइड बॉम्बर भी था, उसने आपको एक्सप्लोड किया, जिससे 7 जवान जो है हमारे शहीद हुए, लेकिन उनके मेरे ख्याल में जो लोग मारे गए हैं जो बिल्कुल सही में वो 19 से ज्यादा हैं। अभी फिगर तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये कंफर्म जो दहशतगर्द थे, तो इस तरीके से इस इलाके को अभी क्लीन किया जा रहा है और ये आखिरी इलाका है।
ओके, बेहद शुक्रिया ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और सामीन, हमारे नेक्स्ट सेगमेंट जो रोहिंग्या मुसलमानों की जो हालत इज़ार है उस हवाले से है, उस पर हम बात करेंगे डॉक्टर मेहदी हसन साहब, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सदर, ह्यूमन राइट्स जो हैं उसके काफ़ी आप एक्टिव कारकुन हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं, लेकिन हमने इस वक्त एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस मौजू पर बात करेंगे। जी सामीन, प्रोग्राम जहां रंग में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद, मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस, और हमारे साथ हैं डॉक्टर मेहदी हसन साहब पाकिस्तान से, और काफ़ी देर से कॉलर हैं मियांवाली से मुरीद खान, उनको हम मुख्तसर सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुरीद साहब।
वालेकुम जनाब, दोस्त ख्याल कर रहा हूँ। ये जो रंग है कि मुसलमान है, अगर अमेरिका होते या बरतानिया के होते तो मैं देखता कि क्या उनके इस तरह वो जलील ख्वार होते। बाकी इंडिया ने सबसे पहले दहशतगर्दी तो कश्मीर में की 1947 में, फिर उसने दहशतगर्दी की बांग्लादेश में, फिर उसने अभी कर रहे हैं हमारे बलूचिस्तान में, और सबसे बड़ा दहशतगर्द दुनिया में इंडिया है। इंडिया को बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है, अगर ये
यही इल्जाम जो है मुरीद साहब, बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं, अगर इस वक्त हम इंडिया से किसी कॉलर को लें तो वो भी यही इल्जाम जो है पाकिस्तान पे आयद करें। बेहद शुक्रिया आपका डॉक्टर मेहदी हसन साहब, आपकी जानिब हम आते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों से मुतल्लिक एक काफ़ी सख्त रद्दअमल जो है इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से हमें नज़र आ रहा है, उन्होंने एक स्पेशल कमेटी जो है वो भी तश्कील दी है, जो सिफारिशात उन्होंने इस कमेटी ने पेश करनी है, जिस पर वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो दस्तखत करेंगे और फिर उस पर अमल दरामद करने की कोशिश की जाएगी। इस रद्दअमल की वजह क्या है?
देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के मीडिया ने काफी क्रिटिसाइज किया हुकूमत को, और क्योंकि हमारा मीडिया जो है वो मजहबी मामलात में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, और इन लोगों का जो बर्मा के मुसलमान इस वक्त कहा जा रहा है कि बेयारो बदगार हैं, उनको ह्यूमन उस पे नहीं देखा जा रहा ट्रेजिडी के तौर पे, वो उस पे सारा स्ट्रेस इस बात पे है कि वो मुसलमान हैं। हालांकि इसमें जो कुछ सामने आए हैं शवाहिद, उसमें ये बताया गया है कि ये एथनिक जो इनका ओरिजिन है वो बांग्लादेश से है, और ये बहुत पहले यानी अंग्रेज जब कॉलोनियल हुकूमत थी सब कॉन्टिनेंट में, उस वक्त ये लोग जाके वहाँ आबाद हो गए थे, आबाद हो गए, तो इनको इन्होंने ये मतालबा भी किया हुआ है कि दो जिले जो हैं उनको ये अलहदगी चाहते हैं, और ये कहा गया है इनकी तरफ से कि जैसे सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान बनाया गया है मुसलमानों के लिए, इस तरह ये दो अजला जो हैं ये यहाँ पे इनको ऑटोनॉमी दे दी जाए या आज़ाद कर दिया जाए और इनकी अपनी मुमलिकत वहाँ बन जाए, जो बर्मा की हुकूमत को जिस पे जिस कि मेजोरिटी जो है वो विदेश है और उसको विदेश हुकूमत कहा जाता है, उन्हें ये नाकाबिले कबूल है और उन्होंने इसीलिए
ये सब कुछ किया है। ठीक है जी, बिल्कुल डॉक्टर मेहदी हसन साहब सही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये इकदामात जब देखते हैं तो कुदरती तौर पर एक सवाल जो है वो जहन में उठता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें जो मसीही बरादरी है, हिंदू है, बाकी जो लोग हैं शिया मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान जो आवाज़ उठा रहा है और जिस तरह उसने कहा है कि वो UN और जो OIC है उसको मोबिलाइज करने की कोशिश करेगा, तो कितनी संजीदगी से पाकिस्तान की आवाज जो है उसको सुना जाएगा जब खुद उसके मुल्क में ये कुछ हो रहा है?
नहीं, वो आवाज बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। इसकी वजह ये है कि OIC जो है वो तो एक नुमाइशी इदारा है, उसने आज तक किसी मसले पे, वो मिडिल ईस्ट के मसाइल हों या और मुसलमान मुल्कों के कोई मसाइल हों, पाकिस्तान के हों, किसी और मुल्क के हों, उन्होंने कभी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट उनकी तरफ से सामने नहीं आई। लिहाजा आप ये जान लीजिए कि इस मसले पर भी OIC कुछ नहीं करेगा। रह गई बात यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकती जब तक के कोई शिकायत करने वाला बाकायदा सामने ना आए और इस मसले को वहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए से ना उठाए। पाकिस्तान ने जो कमेटी बनाई है वजीर आजम साहब ने, वो कमेटियाँ पाकिस्तान में बहुत सी बनती हैं और नोटिस भी लेते हैं, वजीर आला भी नोटिस ले लेते हैं, वजीर आजम भी नोटिस ले लेते हैं मुख्तलिफ पाक्षात का, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो मैं कोई बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ कि ये कमेटी जो सिफारिशात मुरतब करेगी उसका कोई पॉजिटिव नतीजा निकलेगा और इन लोगों को जो बेसरोसाबानी के आलम में समंदर में फिर रहे हैं, या कुछ लोग जो है मलेशिया चले गए हैं, कुछ पाकिस्तान में आ गए हैं, कुछ और मुल्कों में, मुसलमान मुल्कों में चले गए हैं, इनको कोई ऐसा फायदा पहुंचने वाला मेरा ख्याल है उस कमेटी से नहीं होगा, इनकी सिफारिशात से, कि इनकी मुश्किलात खत्म हो सके।
ठीक है,
ये मुश्किलात उस वक्त खत्म हो सकती हैं जब अल्लामा इकबाल के शेर को, इस मिसरे को सामने रखें कि है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। बात यह है कि मुसलमान मुल्क इतने डिसऑर्गेनाइज हैं, अगर मजहब के नाम पे भी वो इसको डील करना चाहें तो जितने मुसलमान मुल्क है मिडिल ईस्ट में, वहाँ उनकी अपनी हुकूमतें, डिक्टेटरशिप हैं, बादशाहत हैं, अमारतें हैं, अवाम से ताल्लुक नहीं है उनका, और वो इस किस्म के मामलात को उस तरह डील नहीं कर सकती जिस तरह के डेमोक्रेटिक सोसाइटीज डील किया करती
है। ठीक है, ओके। डॉक्टर मेहदी हसन साहब, पाकिस्तान तो ठीक है कुछ जो मुसलमान हैं उनके लिए आवाज़ उठाता है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं उनकी हालत वो इस वक्त काफ़ी बुरे हालात में हैं। जी, बताया जा रहा है डॉक्टर मेहदी हसन साहब जो हैं उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। हम सामीन इस वक्त एक ब्रेक लेना चाहेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर मेहदी हसन साहब दोबारा हमें ज्वाइन करें और उसके बाद डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब जो हैं वो भी हमारे प्रोड्यूसर कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारा साथ दें क्योंकि उनकी उनके व्यूज़ भी हम ले सकें इस टॉपिक पे। इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है, ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे, लेकिन इस सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा नईम।
G20 جی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے, اور ڈاکٹر مہدی حسن صاحب آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی ان اسٹرینڈڈ مسلمانوں پاکستانیوں کے حوالے سے جو اس وقت بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, میسور جو بہاری ہیں ان حوالے سے, اور ساتھ ہی جو شیعہ مسلمان ہیں جو کشتیوں کے ذریعے پاکستان سے باہر بھاگ رہے ہیں, آسٹریلیا جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی بھی راستے میں ہلاکتیں ہو جاتی ہیں, ان کی حالت جو ہے وہ بھی برما کے جو مسلمان ہیں روہنجیا ان سے کچھ کم نہیں ہے, ان کے لیے پاکستان نے کہاں تک آواز اٹھائی ہے؟
دیکھیے, اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بات کا بیان کر دوں کہ کچھ بنگلہ دیش میں ایسے اردو اسپیکنگ لوگ ہیں جو بنگلہ دیش بننے سے لے کے اب تک کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ بنگلہ دیش انہوں نے فوج کی مدد کی تھی اور بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا تھا, وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. میں 2 سال پہلے گیا تھا ایشین ہیومن رائٹس کی طرف سے وہاں کی مائنورٹیز کے حالات پہ رپورٹ میں نے ایک تیار کی تھی 2 ہفتے کے ٹور کے بعد, تو اس میں وہ بھی آئے تھے میرے پاس جو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ بہاری ہیں, وہ بہار سے وہاں مائگریٹ کر کے گئے تھے 47-48 میں, اور انہوں نے فوج کی مدد کی تھی جب 1971 میں ملٹری ایکشن ہوا تھا وہاں.
ٹھیک, اوکے,
تو بنگلہ دیش
ٹھیک ہے, بنگلہ دیش اس وجہ سے ٹھیک ہے انہیں قبول نہیں کر رہا, لیکن پاکستان انہیں آنے کیوں نہیں دے رہا اور ان لوگوں کو پاکستانی شہریت سے کیوں اس نے محروم رکھا ہے؟
اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اگر انہیں پاکستان میں لایا گیا, پہلے کوشش کی گئی تھی اور ان کو پنجاب میں خانے وال اور ملتان کے درمیان میں آباد کرنے کی کوشش کی گئی تھی کچھ لوگوں کو لا کے, لیکن وہ سب کراچی چلے گئے, اور حکومت کا خیال یہ ہے, مختلف حکومتوں کا جو جب سے اب تک قائم ہوتی ہے, کہ اگر ان کو یہاں لے آیا گیا جو 2.5-3 لاکھ کے قریب لوگ ہیں, تو وہ سب کراچی میں آ جائیں گے اور ایم کیو ایم کی جو طاقت ہے اور انفلوئنس ہے وہ بڑھ جائے گا ان کے آنے سے, کیونکہ وہ سب ایم کیو ایم کے ساتھی ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میں نے ان کی حالت غار دیکھی ہے, کوئی وہ رکشہ چلاتا ہے, وہ جو انسان رکشہ کھینچا کرتے ہیں وہ, کوئی چابڑی لگاتا ہے, ان کے بچے جو ہیں وہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے, وہ اپنے آپ کو اب بنگلہ دیشی کہتے ہیں, لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ تیار نہیں ہیں اپنے آپ کو بنگلہ دیشی کہنے, وہ اس امید پہ بیٹھے ہیں ابھی تک کہ پاکستان ان کو اپنے پاس بلا لے گا. تو اس کو نہیں کرتے تو برما کے مسلمانوں کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟
اوکے, بے حد شکریہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر خود اقلیتی جو لوگ ہیں ان کے جو حالات ہیں, ان کو جن پرتشدد واقعات کا سامنا ہے, آئے روز ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ساتھ بہاری جو مسلمان میسور پاکستانی ہیں ان کے لیے پاکستان کچھ نہیں کر رہا, اور ایسے حالات میں برما کے مسلمانوں کے لیے اس کا آواز اٹھانا, اس کو کہاں تک سنجیدگی سے عالمی برادری جو ہے جی وہ سن سکتی ہے. بالکل, یہی میں جاننا چاہ رہی تھی آپ سے. بے حد شکریہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, یہاں واشنگٹن سے ہمیں ایک اور ویل نون اینالسٹ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور ٹرکی الیکشن اور G7 سمٹ جو اس وقت جاری ہے جرمنی میں اس پہ ہم ان سے بات کریں گے, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے, بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے. We'll be right back.
عزیز سامعین، ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، اور آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. بتایا جا رہا ہے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے.
ہلو
جی، السلام علیکم.
جی
ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، ترکی میں الیکشن جو ہے وہ ہو چکے اور نتائج جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، اور جو نتائج سامنے آئے ہیں 2003 سے لگاتار کامیابیاں حاصل کرنے والے طیب اردوان جو ہیں، ان کی جو جماعت ہے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، وہ پارلیمنٹ میں اکثریت کو چکی ہے. کہاں تک یہ ریزلٹس متوقع تھے، اور اس کے اسباب وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں؟
یہ یقیناً متوقع تھے. دیکھیے، جب کوئی گورنمنٹ بھی اتنے عرصہ میجورٹی میں رہتی ہے تو اس کی وجہ سے ایکسیسز شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ اب پچھلے 2 سال میں وہاں تو کئی حد تک سول ڈس اوبیڈینس ہوئی تھی، اور کئی لوگ خاص طور پہ سیکولرسٹ پارٹی اور لبرل جو تھے، لیفٹسٹ جو تھے، وہ گورنمنٹ کی پالیسی سے خوش نہیں تھے. اس کے ساتھ ساتھ کرد جو تھے وہ گورنمنٹ کی اس پوزیشن اور اس پالیسی کے ساتھ نہیں تھے، جس کی وجہ سے سیریا میں انٹروینشن ہو رہی تھی اور کردوں کو سپورٹ نہیں مل رہی تھی. اسی وجہ سے جو الیکشن تھا اس میں چینج، اس میں پولیٹیکل سپورٹ ڈیفینیٹلی رولنگ پارٹی کے لیے کمزور ہو گئی، اور وہ اپنی میجورٹی لوز کر رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اس قسم کے جو ریسپانسز ہوتے ہیں یہ نارمل ہوتے ہیں، اور ان کو ایک نارمل طریقے سے سوچنا ضروری ہے. بیسیکلی یہ ڈیموکریسی کے ٹرائمف کہہ لیجئے، کہ جس کی وجہ سے جو سینٹیمنٹ ہے اس ملک میں، لوگوں میں جو سینٹیمنٹ ہے وہ سامنے آ گیا ہے.
ٹھیک، اوکے. اور کافی دیر سے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، ایک کالر ہے محمد شفیع چترال سے، ان کو ہم سنتے ہیں اگر ان کا کوئی سوال ہو ٹرکی الیکشن پہ. جی السلام علیکم.
جی محمد شفیع چترال بونی سے بات کر رہا ہوں. یہ اس موضوع کی طرف تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن تھوڑا سا ریڈیو کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ جب سے ٹی وی پہ آپ لوگوں نے پروگرام دکھانا شروع کیا ہے، اور ہمیں جو ہے ریڈیو سننے والوں جو ہے یہ اس سہولت سے محروم ہو گئے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کالروں کو نہیں لیا، اور حکومت پاکستان نے 7.50 روپے جو ہے ملازمین اور پینشنر حضرات کو دیا، اس پر آپ لوگوں نے، یہ شکوہ ہے لوگوں کا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سائٹ لے رہے ہو اور براہ راست جو ہے لوگوں کی رائے نہیں لے رہے ہو.
بالکل، ہم آپ کی کال کل ہمارا جو پروگرام تھا لسنرز لیٹرز، اس میں آپ لوگوں نے شکایات کی ہے، اور آج اسی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں. تمام سننے والے ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے ٹول فری نمبر 0800-777-7789 پہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم ہر سیگمنٹ میں آپ کو جگہ دیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں کال کی. تھینک یو محمد شفیع صاحب، کیونکہ اور بھی کالرز ہیں اور آپ کو ہم نے کافی ٹائم دیا. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، دوبارہ آتے ہیں ٹرکی الیکشن کی جانب، اور جو حکمران جماعت ہے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ، ان کی جو بڑی مخالف جماعتیں ہیں جس میں کردش جو پارٹی ہے وہ بھی شامل ہے، کردوں کی جماعت، اب آپ کو لگتا ہے کیونکہ مخلوط حکومت کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکمران جماعت ہے ان کے خلاف اتحاد کے کیا چانسز آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، جو کردش پارٹی ہے وہ خالص کردش پارٹی نہیں ہے. وہ پارٹی جو ہے اس میں کئی جوان سال لوگ شامل ہو گئے ہیں جو لبرل اور لیفٹ اور سیکولر قسم کی پوزیشن رکھتے ہیں، اس لیے وہ پیورلی کردش پارٹی تو نہیں ہے. اس کے بعد یہ آ جاتی ہے کہ آیا جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جن کی آپس میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں، وہ اکٹھی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی. جو نیشنلسٹ پارٹی ہے وہ کردش پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ نیشنلسٹ پارٹی جو ہے وہ کردش گروپ کو کوئی انڈیپینڈنٹ قسم کی حیثیت نہیں دینا چاہتی. جہاں تک تعلق ہے مین ریپبلکن پارٹی کا، وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ دوسری پارٹیز کو اپنے ساتھ لانے کے قابل نہیں ہوگی. ایسی صورت میں نیگوسیشنز ہوں گی. کیا کس قسم کی نیگوسیشنز ہوں گی، اور کس قسم کی کوالیشن پارٹی اور گورنمنٹ بنائی جا سکتی ہے، یہ بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ترکش کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق ایک مائنورٹی گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے. 45 دن کے اندر نئی گورنمنٹ تشکیل کرنا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر پریزیڈنٹ کسی اور لیڈر کو کہہ سکتا ہے کہ وہ کوشش کریں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایک اور نئے الیکشن کال کیے جائیں گے جو کہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے پاسبلٹی یہی ہے کہ شاید یہ کردش پارٹی جو ہے اے کے پی کے ساتھ مل کے اپنی ایک کوالیشن گورنمنٹ بنانے کے لیے تیار ہو جائے. اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو نئی جب جو گورنمنٹ پارٹی ہے اس وقت اس نے کردوں کی بڑی مدد کی ہے اور وہ تمام پارٹی کو دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ پرو کردش قسم کی پارٹی ہے. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے سیریا کے کردوں کی مدد نہیں کی تھی, لیکن نیشنلی سپیکنگ وہ کردش پارٹی کے زیادہ نزدیک ہیں بنسبت دوسرے پارٹیوں کے. اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز مل کے اپنی کوالیشن پیدا کر دیں.
اوکے, لیکن موجودہ صورتحال کو, اس وقت جو حالات ہیں ترکی میں, اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو حکمران جماعت ہے وہ بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکتی, اور اس کے مخالف جو جماعتیں ہیں, جس طرح آپ نے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب کہا کہ ان میں بھی اختلافات کافی پائی جاتی ہیں, اور کافی جو تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی حکومت کے خلاف یکجا نہیں ہو سکتی, اس کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ایک مستحکم حکومت جو ہے ترکی میں وہ بن سکے گی؟
دیکھیں, دو چیزیں ہو سکتی ہیں, دو سیناریوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ بنے, وہ مائنورٹی گورنمنٹ کسی نہ کسی دوسری تیسری پارٹی کے ساتھ اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لے کہ جو میجر ایشوز ہیں جن میں بجٹ شامل ہے یا فورن پالیسی وغیرہ شامل ہے, ان کی سپورٹ کریں. اس کے بعد یہ مائنورٹی گورنمنٹ چلتی رہے, یہ کمزور گورنمنٹ ہوگی, مضبوط گورنمنٹ نہیں ہوگی. دوسری بات آ جاتی ہے کہ اب دو پارٹیاں مل کے ایک قسم کی میجورٹی حاصل کر لیں تو بھی کمزور پارٹی ہوتی. یاد رہے کہ یہ ڈیموکریسی کے لیے تو بڑی اچھی بات ہوئی ہے, لیکن اکنامکس کے لیے, ملک کی معیشت کے لیے یہ بہت غلط بات ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جو ریفارمز ہو رہی تھیں وہ رک جائیں گی یا کمزور ہو جائیں گی, جس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر کوالیشن گورنمنٹ بنتی بھی ہے, وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گی اور ایک نئے الیکشن کال کرنے ضروری ہو جائیں گے.
ٹھیک, اوکے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, کوئکلی آتے ہیں, G7 سمٹ کا آج آخری اور دوسرا دن ہے, صدر اوباما بھی وہاں موجود ہیں. اس وقت اگر ہم دنیا پہ ایک نظر دوڑائیں تو یہ G7 جو سمٹ ہے ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب یوکرین میں روسی اگریشن جو ہے وہ اسی طرح ہمیں نظر آ رہا ہے, گریس جو ہے اس میں فائنینشیل کرائسس جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے ایک طرح سے. اس کے علاوہ دو ایک ایسے ایشوز ہیں اگر امریکہ کے اندر دیکھا جائیں جو اوباما لیگیسی کے لیے کریٹیکل خیال کیے جاتے ہیں, وہ ہے ایشیا اور یورپ میں فری ٹریڈ جو ایگریمنٹ ہے وہ, اور کلائمیٹ چینج. تو یہ ان ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس G7 سمٹ سے؟
دیکھیں, جہاں تک G7 کا تعلق ہے اس میں چند اہم قسم کے کچھ سوالات ہوتے ہیں اور کچھ کم اہم سوالات ہوتے ہیں, خاص طور پہ وہ جن کے اوپر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو چکی ہے. فار ایگزامپل, جہاں تک کلائمیٹ چینج کا معاملہ ہے اور جہاں تک رشیا کے ساتھ اور جیسے آپ نے کہا گریس کا جو معاملہ ہے, اس پہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہیں لیکن کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہیں. اس لیے یہ کانفرنس بڑی اہم ہے کہ اس کے اندر کوئی کامن پوزیشن بن سکتی ہے کہ نہیں. سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ دو یا تین جو بڑے اہم سوالات ہیں جن میں IS کا معاملہ ہے, جس میں مڈل ایسٹ کرائسس کا معاملہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک تعلق ہے رشیا کا, وہ بہت اہم ہے اور لگتا ہے کہ ان کے اوپر اتنی کوآپریشن نہیں ہوگی جتنی کی امید کی جا سکتی ہے. جہاں تک گریس کا تعلق ہے, یہ گریک ایشو جو ہے یہ بیسیکلی یورپین ایشو ہے. اس کو سالو کرنا آسان تو نہیں لیکن مشکل بھی نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک پہنچتا ہے, کیونکہ یہ ایک فائنینشیل ایشو ہے اور فائنینشیل ایشو کو سالو کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے کی کوآپریشن حاصل کرنی ضروری ہوگی, جو کہ امید ہے کہ ہو جائے گی, چاہے وہ 11th بار میں ہو. جہاں تک تعلق ہے رشیا کا, وہ اس لیے کمپلیکس ہے کہ رشیا کو صرف ایک ممبر چاہیے یورپین یونین میں, جو کہ یورپین یونین کے یونانیمس پوزیشن کو سپورٹ نہ کرے, جس کی وجہ سے کوآپریشن رک جاتی ہے. تیسری بات جو آ جاتی ہے, جیسے آپ نے فرمایا ایشیا کے متعلق, ایشیا کی جو بات ہے اس میں یورپ امریکہ کو سپورٹ کرتا رہے گا. فائنلی جو بات ہے, میں ایک فائنلی بات بتاتا چلوں وہ یہ کہ جہاں تک تعلق ہے آئی ایس آئی ایس کا, اس پر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں اور ڈفرینسز رہیں گے.
اوکے, بے حد شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. ٹائم کافی کم ہے اور سامعین اس وقت اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر الماس تاج آوان صاحبہ نے, وہ پاکستانی ہیں یہ جنہوں نے یو ایس ینگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انٹرپرینیور کمپٹیشن کے لیے کوالیفائی کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر الماس تاج آوان صاحبہ.
وعلیکم السلام شہناز, کیسی ہیں آپ؟
تھینک یو سو مچ, کانگریٹس ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد, اور یہ بتائیے کہ جس فیلڈ کے لیے آپ نے کوالیفائی کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کچھ.
ویل شہناز, میرا یہ جو پروجیکٹ ہے جس کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا, یہ میں تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ بتا دوں. میں پچھلے 7 سال سے جو ہے برازیل میں رہ رہی ہوں, یہاں میں نے اپنا پی ایچ ڈی کیا, اس کے بعد میں اپنے پوسٹ ڈاک پہ ہوں. تو بیسیکلی یہ پروجیکٹ میرا پی ایچ ڈی پروجیکٹ تھا. ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی زرعی ہمارے بقایا جات ہیں جس کو ایگریکلچرل ویسٹ کہتے ہیں, ہم ان کو یوٹیلائز کریں اور انہیں ہم کسی کچھ اچھے پروڈکٹس جو ہے ان سے ان کو حاصل کیا جا سکے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ٹارگیٹ کیا اورنج ویسٹ کو, کیونکہ برازیل جو ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اورنج جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے. تو ہر سال ملینز آف ٹنس کے حساب سے اورنج کی پروسیسنگ ہوتی ہے, تو اسی حساب سے جو ہے تقریباً آدھا جو ہے ویسٹ جو ہے نکلتا ہے اس انڈسٹری سے. تو ہم نے اس ویسٹ کو یوٹیلائز کیا. سب سے پہلے جو مین پروڈکٹ ہم نے بنائی وہ تھی بایوتھنال, جس سے گاڑیاں چلتی ہیں. بہت سارے سامعین کو, چونکہ پاکستان میں یہ بھی پروگرام سنا جا رہا ہوگا, انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے چونکہ ابھی وہاں پہ یہ فیول جو ہے انٹروڈیوس نہیں ہوا, لیکن برازیل دنیا کا وہ ملک ہے جس نے اس کو استعمال کر کے ایک بہت بڑی مثال قائم کی ہے. یہاں پہ تقریباً 70-80% تک جو گاڑیاں ہیں وہ فلیکس فیول پر ہیں, اور یہاں پہ لوگ پیٹرول اسٹیشنس پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ بھئی آج جو ہے پیٹرول کی قیمت کم ہے یا بایو ایتھنال کی قیمت جو ہے وہ کم ہے, تاکہ اس کو جو ہے وہ یوز کیا جا سکے. تو بیسیکلی ہم نے اس بایو ویسٹ کو, جو کہ اورنج مالٹے کا چھلکا, اس کے اندر سے نکلی ہوئی میمبرینز اور بیج جو کہ اورنج جوس نکالنے کے بعد انڈسٹری میں پروڈیوس ہوتی ہیں, رہ جاتی ہیں, بچ جاتی ہیں, اور وہ اس کو سمپل کچرے کی فارم میں جو ہے کہیں پہ ڈھیروں میں پھینک دیا جاتا ہے. تو ہم نے اس کو استعمال کیا اور کچھ ڈرگز ہم نے اس سے بنائی ہیں, نینو فائبرز اور نینو سیلولوز ہیں وہ بھی ہم نے ان سے بنائے ہیں, اور جیلنگ ایجنٹس جو ہیں جو کہ جیمز میں اور مارملیڈز میں یوز ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم نے ایکسٹریکٹ کیا ہے. تو بیسیکلی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ان ایگریکلچرل ریزیڈیوز سے ریلیٹ کرتا ہے جو کہ ہمارے یہاں انڈسٹریز میں, صنعتوں میں پروڈیوس ہوتے ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو ہم برازیل کے ساتھ کولیبوریشن میں وہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو شناز فی الحال ایسا ہے کہ یہ جو ریسرچ ہے میری یہ بینچ اسکیل پر ہے, اور کنسیڈرنگ سکسیس جو کہ ہمیں ملی اپنے ریزلٹ سے, پیٹنٹ ہم نے کیا ہوا ہے اس کو, اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی اپلیکیشنز جو ہیں پریکٹیکلی بہت زیادہ ہیں.
اوکے, یہ بتائیے گا کہ کیا عام لوگ جو ہیں وہ بھی ووٹنگ میں حصہ لے سکتے ہیں اور کس طرح وہ ووٹ دے سکتے ہیں؟
بالکل, میں جتنے بھی ابھی فی الحال مجھے دیکھ رہے ہیں میرے ناظرین یا سامعین جتنے بھی ہیں, میں ان سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ پہلا جو راؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ میرے پروجیکٹ کو ایکسپرٹ پینل تھا جس نے اس کو ایویلویٹ کیا, اور سیمی فائنلسٹ کی لسٹ میں پوری دنیا میں مور دین 800 پروجیکٹس جنہیں میرا پروجیکٹ جو ہے وہ چوز ہوا ہے, سلیکٹ ہوا ہے. تو جو نیکسٹ راؤنڈ ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے جی آپ پہ, آپ مجھے ووٹ کیجئے اور آپ کی ووٹنگس پر ہی جو ہے, آپ کی ووٹنگس جو ہیں انہیں پر جو ہے آگے ایویلویشن ہوگی. ووٹنگ کے لیے آپ کو گیسٹ کی ویب سائٹ پہ جانا ہوگا, 5 ہائیسٹ ووٹ ہے, آپ اس کو پلیز کیجیے. 3 دن ہیں جو کہ رہ گئے ہیں, اینڈ ہوپفلی آپ کے ووٹس جو ہیں
وہ بالکل اس کی کافی اہمیت ہے اس موڑ پہ. اور سامعین کو وہ ویب سائٹ جو ہے میں بتانا چاہوں گی, آپ جس طرح ڈاکٹر آوان نے کہا ہے کہ جس network.org/tech-i/vote جو ہے اس پہ آپ جا کے ووٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر آوان کا تعلق پاکستان سے ہیں, ضرور سامعین اس ویب سائٹ پہ جائیے اور ووٹ کیجیے ان کے لیے. تو اور آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی ڈاکٹر آوان کے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے برازیل میں وقت گزارا ہے وہاں پہ, اور پاکستان میں یہ جو فیلڈ ہے اس میں فرق کیا ہے, کیا پاکستان میں کیا لمیٹیشنز ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں؟
دیکھیں पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो थोड़े से कम हैं। ऑब्वियसली आपको काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आपको लैब्स चाहिए, आपको केमिकल्स चाहिए, और अब वो आपको सब चीज़ें इन टाइम चाहिए। थोड़ा सा ये फैक्टर है जो कि पाकिस्तान में फिलहाल इकोनॉमी हमारी जो है वो इतना हमें अलाउ नहीं कर रही है कि हम रिसर्च पे तवज्जा दे सकें। लेकिन जहाँ तक टैलेंट की बात है, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड कौम है, और आप जहाँ पे भी देखें आपको पाकिस्तानी जो है वो पूरी दुनिया में मिलेंगे। और एज अ पाकिस्तानी
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आइंदा भी आपसे बात होगी डॉक्टर अलमास ताज आवान साहब, आपका और सामीन। इसके साथ ही प्रोग्राम जहाँ रंग का इख्तिताम होता है। मेज़बान शहनाज नफीस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।